इत्तेबाए सुन्नत के मसाइल बुक में से हम आज जो चैप्टर देखेंगे उसका नाम है अस-सुन्नतु वल आइम्मतु, सुन्नत आइम्मा कराम की नज़र में। आइम्मा इमाम की जमा होती है। इशारा है इसमें वो लोग जो अपने दौर में दीन की बहुत खिदमत करने की बुनियाद पे इमाम के लकब से पहचाने जाते हैं, तो वो सुन्नत को क्या अहमियत देते थे। इन्हीं को आइमाए अरबा भी कहते हैं आज के दौर में। चार इमाम, ये कौन थे? इसमें एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमहुल्ला। तो हम देखेंगे कि इनकी नज़रों में सुन्नत का क्या मुकाम था। मसला नंबर है 61। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तमाम आइमाए कराम ने अपने अकवाल को और राय को तर्क करके सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया। इसकी दलील, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह से पूछा गया, अगर आपका कोई कौल कुरान मजीद के ख़िलाफ़ हो तो क्या किया जाए? इमाम अबू हनीफा ने जवाब दिया कि कुरान मजीद के मुकाबले में मेरा कौल छोड़ दो। फिर पूछा गया, अगर आपका कौल सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ हो तो क्या किया जाए? इमाम अबू हनीफा ने जवाब दिया, सुन्नत रसूल के मुकाबले में मेरा कौल छोड़ दो। फिर पूछा गया कि आपका कौल सहाबा कराम के कौल के बरक्स हो तो फिर क्या किया जाए? फरमाया, सहाबा के कौल के मुकाबले में भी मेरा कौल छोड़ दो। ये कौल अक्दे जैयत में है। ये किताब का नाम है ज़करहू फ़ी अक्दिल जैयत। तो यहाँ से हमें इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह अलैह की सोच समझ में आई कि उनकी नज़र में कुरान, सुन्नत और सहाबा कराम के अकवाल की अहमियत अपने कौल से ज़्यादा थी। आइए देखते हैं कि बाकी आइमा कराम क्या कहते हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाशुबा मैं बशर हूँ, बशर कहते हैं इंसान को, मेरा कौल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लिहाजा मेरे कौल पर गौर करो, जो किताबो सुन्नत के मुताबिक हो इस पर अमल करो, और जो इसके खिलाफ हो इसे छोड़ दो। इसका रेफरेंस इब्ने अब्दुल बर ने किताब अल जामेल बयानुल इल्म में इसका जिक्र किया है। इस कॉल से पता चला कि इमाम मालिक अपने आप को इंसान समझते थे और इंसान ख़ताओं का मजमुआ है, भूल उसके अंदर होती है, और किसी इंसान का इल्म इतना कामिल नहीं हो सकता कि वो ये कह दे कि मैंने कुरान और सुन्नत की हर बात को अपने हाथ में ले लिया। तो लिहाजा इससे इमाम मालिक का नज़रिया हमें मिला। इमाम शाफ़ी के बारे में क्या बात मिलती है? हज़रत इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जब तुम मेरी किताब में कोई बात सुन्नत रसूल के ख़िलाफ़ पाओ तो मेरी बात छोड़ दो और सुन्नत के मुताबिक अमल करो। क्या इमाम शाफ़ी अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं ये बात कह के? ये कहना कि क्या वो जानबूझ के अल्लाह के नबी की सुन्नत के ख़िलाफ़ बातें अपनी किताबों में लिखते थे? क्या उन्होंने केयरलेसली अपनी किताबें लिखी? नहीं है, लेकिन उनको पता था कि हम इंसान हैं, इंसान से ख़ता हो सकती है। रिसर्च और तहकीक में अभी और भी वसत आएगी, आने वाले वक्त में अहादीस को और ज़्यादा खुल के बयान किया जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ मिले तो उसको छोड़ दो और सुन्नत के मुताबिक अमल करो। एक दूसरी रिवायत में है कि सिर्फ सुन्नत रसूल की पैरवी करो और किसी भी दूसरे शख्स की बात पर तवज्जो ना दो। इब्ने इसाकिर नववी और इब्नुल क़य्यिम ने इसका जिक्र किया है। इसी तरह इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ना मेरी तकलीद करो, ला तकल्लिदूनी, ना इमाम मालिक की, ना इमाम शाफई की, ना इमाम औज़ाई की और ना इमाम सौरी की। ये जो आखिर के दो नाम है ये गैर मारूफ है हमारे यहाँ, लेकिन ये बहुत बड़े अपने दौर के आलिम गुजरे। किसकी करो? बल्कि दीन के अहकाम वहीं से लो जहाँ से उन्होंने लिए। वो कौन सी जगह थी? किताब और सुन्नत। फुलानी ने अपनी किताब हममुल उलुल अबसार में इसका जिक्र किया है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगो, दीन में अपनी अकल से बात करने से बचो, सुन्नत रसूल की पैरवी को अपने लिए लाजिम कर लो, जो सुन्नत से हटा वो गुमराह हो गया। इसका जिक्र इमाम शारानी ने अपनी किताब मीज़ान में किया है। अब इन सारी चीज़ों को सामने रखने से मेरा ख्याल है कि उन सारे ही सवालों का जवाब मिल गया। जो अमूमन इस मौजू पे किए जाते हैं। आज के दौर में एक मारूफ मसला ये पेश किया जाता है कि आपको किसी एक इमाम का मुकल्लद होना चाहिए। आपने सुनी है ये बात कभी किसी से? और जिसने इमाम नहीं पकड़ा वो कहाँ जाएगा? और बास दफा तो इस हद तक सख्ती की जाती है कि ऐसा शख्स जहालत की मौत मरा जिसने किसी की इमामत के फंदे को गले में नहीं डाला। तो क्या हैसियत है? या हम कोई बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाएं, लेकिन बिल्कुल आम फहम बात करूं जिससे आप खुद भी मुतमईन हो सकें और दूसरे किसी पूछने वाले को खुद ऐसे मसले मत छेड़ें, लेकिन अगर कोई संजीदगी से ये मसला पूछे तो आप उसको कायल कर सकें कि आइम्मे कराम कौन थे और उनकी क्या हैसियत थी। पहली बात तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दुनिया से जाने के कई साल बाद ये आइम्मे कराम मंजरे आम पे आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आज के दौर के आपके शहर में कुछ लोग होंगे या आज की इस दुनिया में कुछ लोग जो दीन की खिदमत के नाम से मारूफ हैं। मतलब कुछ नाम आज के दौर से अगर हम देखें, जैसे उसैमिन थे, आपने उनका नाम सुना है कि नहीं? इंतकाल हो गया उनके 2-3 साल पहले। बहुत बड़े आलिम थे, सऊदी अरब के और दारुल उफ्ता में भी थे। फिर इसी तरह एक नाम जिसको आप यूनिवर्सल लेवल पे कहें, अब्दुल्ला बिन बास, नबीना साहब, नबीना थे ये। इनका इंतकाल इमाम उसैमिन से कुछ अरसा थोड़ा पहले हुआ है। इसी तरह तीसरे नाम जिनका जिक्र आपने किताब नबी के साथ सुना होगा, जो नासरुद्दीन अल्बानी थे। अब ये 3 मारूफ नाम हैं, आज और भी बहुत हैं। मतलब अरबी के बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त बड़ी बड़ी जामियात में काम कर रहे हैं। ये सब पहले इल्म सीखते हैं, पूरे रिसर्च करते हैं, पूरे उलूम सीखते हैं, फिर उसके बाद अपने उस सीखे हुए इल्म के मुताबिक दीन की खिदमत करते हैं। इनमें से हर एक की खिदमत है। किसी का एक फील्ड है तो किसी का दूसरा फील्ड है। कोई फिक में अच्छा है तो कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा है तो कोई किसी और में है। बिल्कुल इसी तरह वो लोग जिनको लोग चारों इमामों के नाम से जानते हैं, इमाम अबू हनीफा और दूसरे लोग, ये सब भी अपने वक्त के बेहतरीन आलिम थे। इन्होंने अपनी हैसियत से कोशिश की, सीखा, उस दौर के मुताबिक जितनी हदीसें सामने आ चुकी थी उनको पायल अप किया, उनको अबवाब में बांधा। अगर आपने किसी किताब से फ़ायदा उठाया हो तो आज मार्केट में बहुत खूबसूरत किताबें मौजूद हैं। बस एक किताब है मिनहाजुल मुस्लिम, उस किताब में मुसलमान का मनहज, मनहज कहते हैं तरीके को, लाइफस्टाइल, इसी का दूसरा नाम इस्लामी तर्ज ज़िंदगी भी है। अब ये किताब है, आप इसको खोल के देखेंगे ना तो शुरू से अकीदे पे बात होगी, अल्लाह ताला की ज़ात से बात शुरू होगी, फिर मलाइका, फिर कुत्तों, फिर रसूल, इस तरह चलते चलते आगे फिर वो इबादत को लाते हैं। इबादत में वो वज़ू से बात शुरू करेंगे, फिर नमाज, फिर तयम्मुम, फिर इस तरह होते होते इबादत का टॉपिक पूरा होगा, उसमें रोज़े आएंगे, हज आएंगे, सारी इबादत आई। फिर उसके बाद अगला चैप्टर वो शुरू करते हैं मामलात का, उसमें फिर डीलिंग्स, हकूकुल इबाद और सो ऑन। यानी एक मुसलमान की ज़िंदगी में A to Z जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना वो उसमें नकल करते हैं। बहुत प्यारी किताब है। आप बहुत सारी हदीस की किताबें ना उठा सकें, आप एक किताब उठा ले, बहुत किफ़ायत हो जाएगी। नमाज के मौजू पे बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारे मसले जमा हो जाएंगे, रोज़े के मिल जाएंगे, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब ये एक उनकी बहुत प्यारी कोशिश है, और जो लोग दीनी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। अब इन्होंने क्या आसानी की हमारे लिए कि बजाय इसके कि हम हदीस के नमाज के मौजू पे हदीस देखना चाहते तो हम सिया सित्ता उठाते, यानी जिसमें 6 बड़ी बड़ी किताबें, सही बुखारी, मुस्लिम, इब्ने माजा और बाकी जो किताबें हैं, अब उन सबको हम खोलते, फिर उसमें से हम किताबुस सलात खोलते यानी नमाज का बाब, फिर उसमें जितनी रिवायतें वो बहुत तकरार से भी होती हैं, यानी एक एक रिवायत कई कई सनदों से आती है, फिर उसमें बाज़ रिवायतें कुछ किताबों में ऐसी हैं जिसकी सनद वीक होती है। अब ये हम में से हर बंदा नहीं कर सकता था ना, या करना चाहे तो कर भी सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च है, टाइम ज़्यादा लगता, एफर्ट ज़्यादा होती, उन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी। अब मैं अपने मुँह से कह रही हूँ कि मिनहाजुल मुस्लिम एक बड़ी अच्छी बुक है, लेकिन अब फ़र्क देखिएगा कि मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए, अगर आपको दीन लेना है, कुछ सीखना है ना, तो सिर्फ मिनहाजुल मुस्लिम काफ़ी है। क्या मेरा ये कहना बजा होगा? क्या मिनहाजुल मुस्लिम के मुसन्निफ़ ने दीन की हर बात उसमें पाइल अप कर दी? कुछ उन्होंने रखी होंगी, कुछ खुद ही छोड़ी होंगी, कुछ उनको पता होगा इस लेवल की किताब नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं। कुछ बातें उलमा के लेवल की होती हैं, कुछ आम की हैं, उन्होंने सारी नहीं दी। उन्होंने तो एक मुसलमान की ज़िंदगी का पैकेज दिया। बस ये है इस वक्त मामला आयमाए कराम और उनकी लिखी हुई किताबों का। उन्होंने अपने वक्त में मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने हदीसों को जमा किया, सारे सोर्सेज हदीसों से लिए। कोई इमाम अपने वक्त में ये नहीं नाउसुबिल्ला कहता कि हदीस से छोड़ के मैं अपनी मर्जी से कोई बात करूं। उनके हद तक तो बात बहुत अच्छी थी, इल्म का दौर दौरा नहीं था। जिन लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाना चाहा उन्होंने उठाया। अब उसके बाद क्या हुआ, आज के दौर में मसला क्या है? आज के दौर में मसला वो नहीं है कि उन्होंने अपनी किताबों में क्या लिखा, मसला क्या हुआ कि लोगों ने अपनी इस अपनी निस्बत को वहां पे रोक दिया कि अगर बिलफर्ज, मिसाल है कि हमारे अमूमन आप देखिए कि पाकिस्तान इंडिया के अराउंड जो लोग रहते हैं ना, वो अपने आप को हनफी कहलाते हैं, फिकह हनफी का अरूज है। इसी तरह परब में जाते हैं तो वहाँ शाफई मसलक के लोग ज्यादा हैं, मुल्क शाम में आपको जाते हैं तो मालिकी दिखते हैं, इस तरीके से मुख्तलिफ लोग हैं। अब अगर कोई इमाम अबू हनीफा की किसी लिखी हुई किताब से फायदा उठाए, कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई तशद्दुद नहीं बरतना, लेकिन साथ में इमाम शाफी की लिखी हुई से भी उठा सकता है। जैसे आपको क्या पता कि जब हम लोग तैयारी करते हैं, हमारे सामने कितनी किताबें होती हैं ना, एक आप सिर्फ एक दर्स तैयार करने के लिए आपको दसियों किताबें जमा करनी पड़ती है ना। बहुत अच्छी बात है, एक मौजू आपको इमाम अबू हनीफा की किताब में अच्छी तरह समझ आता है, दूसरा आपको उस वक्त किसी और में मिलता है। बाज़ दफ़ा सिर्फ एक टॉपिक के लिए पूरी किताब आपको फ़ायदा देती है, बाकी चीज़ें उसमें इतनी नहीं होती। अगर कोई इंसान अपने आप को इस लेवल पे खुले जहन से रखता है कि ठीक है मैं अगर किसी एक चीज़ से फ़ायदा उठा रहा हूँ तो दूसरा दूसरे से ले लूँ, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि बस जो एक ने कह दिया उसी को ले लो, बस यहाँ ये सिर्फ मैं आयमाए कराम की बात नहीं कर रही, एक पूरी ज़िंदगी के लिए आपको क्राइटेरियन दे रही हूँ जिस पे आप मुझे भी परख सकते हैं और हमारे इस इदारे को या हमारे इस नाम को भी परख सकते हैं। और वो क्या कि अगर तुम्हारी हमदर्दियाँ और तुम्हारी मोहब्बतें हमारे साथ है ना, तो दैट्स एनफ। अगर तुम हमारे साथ काम कर रहे हो तो तुम्हें कहीं और करने की इजाज़त नहीं या ज़रूरत नहीं। जो आपको अपने से जोड़ेगा ना, वहाँ समझ आए कि गड़बड़ है। आज लोग आयमाए कराम का नाम लेके अपने आप को जोड़ लेते हैं। इमाम अबू हनीफा ने जो किताब लिखी, आप खोल के तो देखे, देखिए चारों आयमाए कराम में से आप कहते हैं, एक मसला लोग पेश करते हैं कि किसी एक इमाम को पकड़ लो, दैट्स एनफ। सुनी भी ये बात, सिर्फ एक को ले लो। मैं आपके साथ इतनी दिलचस्प बात शेयर करूंगी कि शायद आपने कभी सुनी भी ना हो। आप आयमाए कराम की कुतुब खोलें, और वो एक अलग मसला है जो भी बताऊंगी कि उनकी लिखी हुई किताबें भी वाकई उनकी लिखी हुई या उनके बाद की है, ये तो एक पूरा टॉपिक है अलग से, लेकिन यहाँ जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक कि एक का इमाम की किताब है ना, उसमें पूरे पूरे अबवाब ही गायब है। मसलन विरासत का मौजू ले लें, मिसाल दे रही हूँ मैं, कोई इस वक्त बताए कुछ किसी इमाम की पूरी जो फिक्र है उसके अंदर विरासत के मौजू पे कोई बात ही नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं था उसमें। बस जैसे अब मैंने आपको मिनहाजुल मुस्लिम का ही अभी इशारा दिया, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% दीन की हर बात उसमें आ गई, किसी का मिलान नहीं था। किसी किताब में आपको मईशत के बारे में कोई बात नहीं मिलती, किसी में माशरत की नहीं मिलती। तो जो लोग एक इमाम को फॉलो करेंगे बिलफर्ज, तो फिर उनको वो सारे चैप्टर इस्लाम के अपनी ज़िंदगी से निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनके इमाम ने नहीं लिखे। और दूसरी बात, आप सबसे चले एक एक्टिविटी कर लेती हूँ। आप सब यानी हम सब कुरान के साथ ही है ना, हम कुरान के साथ जुड़े हुए हैं। हम आप में से कितने लोग जो अपने आपको अभी तक हनफी मसलक के हनफी कहते हैं, आपकी बैकग्राउंड में या अपनी फैमिलीज में जो लोग आपको हनफी कहते हैं? देखिए मैंने तो सुना है कि बहुत लोग पीछे बैकग्राउंड के वाइस हनफी कहलाते हैं। जो भी अपने आप को हनफी कहलाता है उनसे चंद सवाल हैं। पहला सवाल लिखें आप भी, आपके काम आएंगे। और आप, मैं सवाल करूंगी, जिसको इसका जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करे, आपके लिए बोनस गिफ्ट है। पहला सवाल है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या था? अगला सवाल लिखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साल बाद दुनिया में आए, या उनका दौर जो था आपके दौर से कितना दूर था? आगे लिखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताबें लिखीं उनमें से दो के नाम बता दें। अगला सवाल लिखिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दो स्टूडेंट्स के नाम बता दें जो बहुत मारूफ हुए। सवाल लिख ले। चलिए अगला सवाल लिखें कि उन दो मारूफ किताबों के नाम लिखिए कि जो फिकह हनफी के तहत पढ़ाई जाती हैं। ये छोटे छोटे सवाल सिर्फ शऊर को बेदार करने के हैं। मुझे पूरा यकीन है आपके चेहरों से लग रहा है कि 1% को भी इन सवालों के जवाब नहीं आते। 1% पूरे रूम में शायद एक या दो को आपको आ रहे हैं ना। यही सवाल एक मौके पे मैंने एक ऐसी साथी से किए जो इस बात पे बजिद थी कि वो हनफी हैं और हनफी होना लाजमी है वरना ये सही तरीका नहीं। जब मैंने ये सवाल किया उनमें से एक सवाल का जवाब ना दे सकी, मैंने कहा फिर माजरत के साथ कहूंगी कि आपको हनफी होने का हक नहीं, क्या आप हनफी कहलाने की हकदार हैं। कहती कि इमाम अबू हनीफा का नाम नहीं था ये। मैंने कहा नहीं, ये तो उनकी कुनियत थी। और इसी तरह की बातें, हुवा समाकुमुल मुस्लिमीन, सूरह हज के बिल्कुल आखिर में अल्लाह ने कहा उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। देखिए अगर अल्लाह के नबी जो थे हम भी वही हैं, अल्लाह के नबी के बाद अगर सबसे पहले किसी को इमाम बनने का हक था ना तो वह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को था। आपने आज तक तारीख में कोई फिरका अबू बकरी के नाम से सुना? चलिए उसके आगे चली उमरी फिरका सुना, उस्मानी सुना, अलवी सुना, ये फोर खुलफाए राशिदीन महदीजीन, अगर इनके नाम पे कोई मसलक नहीं बना, अगर ये इमाम नहीं बने तो फिर किसी और को कैसे इजाज़त होगी। देखिए आज ये लोगों को ये नहीं पता कि जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो इमाम अबू हनीफा की अपनी लिखी हुई भी नहीं है। ये तो बाद में कई सालों बाद उनके शागिर्द, दो शागिर्द उनके बड़े होनहार थे, उनसे किताबें निक बनी। और आज फ़िक्हे हनफी में भी दो फिर ग्रुप बन गए, एक उनके अबू यूसुफ की किताबों को लेते हैं, एक दूसरी तरफ लेते हैं। ये चैप्टर खुल गया तो बंद नहीं होगा, लेकिन सिर्फ बात सोचने की है कि ये आइमे कराम अपने बारे में क्या कह रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हमारे मुकाबले में अगर तुम्हें कोई ऐसी हदीस, कोई ऐसी बात मिल जाए जो हमारे में नहीं, तो उसको छोड़ दो, इससे तो उनका उनका अकीदा खुद ही समझ आ गया। जो उनका अपना अकीदा था आज उनकी तरफ फॉलो करने वालों का वो अकीदा नहीं। मैं आपको एक मारूफ सी बात बताती हूँ कि हम फिकह हनफी में को जो लोग फॉलो करते हैं वो रफुल जदन नहीं करते। और वो क्या कहते हैं कि जी क्या हम पूछें अल्लाह के नबी ने नहीं किया था? हाँ कभी करते थे और कभी नहीं करते थे। अच्छा तो फिर आपने कभी किया? कभी भी नहीं किया तो फिर आप क्यों नहीं कभी करते और कभी करते? एक जगह एक मस्जिद में किसी से बहस हो गई, बहुत करीबी थे हमारे अपने घरों में से, इमाम साहब से बात हो गई कि आप बताएं कि आप नमाज में रफुल जदैन क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि साबित नहीं है। अच्छा जी आप हनफी हैं और लाइक दिस। ये जो कहने वाले थे ये घर आए, एक किताब ली, अर रिसाइल उसका नाम है, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब मौजूद है, 248 या इससे कुछ ज़्यादा अहादीस सिर्फ उस बुक में पाइल अप हुई हैं जो रफुल यदैन से मुतल्लिक है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते वक्त अपने हाथों को तीन मुकामात पे, शुरू में और रुकू से उठते हुए और रुकू में जाते हुए रफुल यदैन करते थे। इसको हाथों का उठाना कहते हैं। ये वो बुक ले गए, उनको कहा इमाम साहब ये बुक पढ़ें। देखिए अब झुटलाएं कि हर चीज़ की अरबी सनद है, बुखारी के हवाले, मुस्लिम के हवाले, इब्ने माजा के हवाले, जो भी सही किताबें हैं रिवायतें उसके हवाले थे। कहा आप क्या कहते हैं आप? कहा ये सब ठीक है लेकिन मैं फिर भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं हनफी हूँ। फिर अगला मसला क्या कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा को ये मसले नहीं पहुँचे थे? ये बहुत अहम सवाल है जो उस दिन भी यहाँ इससे मिलता जुलता सवाल किसी ने किया था। तो याद कीजिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब के दौर में थे, सुबह शाम का साथ था, उनको कितने मसले नहीं पता चले। पढ़े थे ना हमने उस दिन ये टॉपिक, उनको नहीं पता चल सका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जिस इलाके में कोई वबा फैल जाए वहाँ बाहर से कोई ना जाए या वहाँ वाला बाहर ना आए। फिर वो हक महर का मसला वो भूल गए, उनके जहन से निकल गई बात। उन्होंने 400 दिरहम जो थे वो साबित कर दी कि इससे ज़्यादा कोई ना करे। कितनी मिसालें हैं। हज़रत उमर जो इतने करीब है अगर वो एक से ज़्यादा मुकामात पे अल्लाह के नबी के कॉल को नहीं पा सके तो आप बताइए कि उसके बाद के किसी किसी इंसान के लिए आप ये कह सकते हैं कि उसका इल्म मुकम्मल है? हर उस्ताद अपनी हैसियत से पढ़ाता है। और आप देखें दूसरा तो छोड़ दीजिए, पढ़ाने वाला से पढ़ा रहा होता है यही बात कि मेरा दिल करता है अभी भी मैंने हक अदा नहीं किया, मैं इसको दोबारा करूँ। आप किसी मौजू पे बात करते हैं ना, सुनने वाले कहते हैं बहुत अच्छी बात की, और पढ़ाने वाला कह रहा होता है आज तो ज़रा सही बात नहीं हुई, हक नहीं अदावत जो तैयारी थी या सोचा था वो हक नहीं मौजू का हल हुआ। ये तो इतनी बड़ी चीज़ है, आप कैसे उन लोगों को नाम ले लेके लड़ते हैं जिनको जो आपस में एक दूसरे के उस्ताद थे, शागिर्द थे। आज ऐसे लगता है कि चारों में से एक इमाम ही ठीक होगा और दूसरा गलत है ना। देखिए जब आपको एक को ठीक कहते हैं तो दूसरा गलत होगा। आप एक रास्ता लेते हैं ना, ये रास्ता सीधा है तो बाकी डेफिनेटली गलत होते हैं। फमाज़ अबाद अल हक़ इल्ल दलाल, सूरत रात में अल्लाह ताला कहते हैं हक के रास्ते को छोड़ोगे तो सिर्फ गुमराहियां रह जाएंगी। तो लिहाजा इस मौजू पे कोई शिद्दत बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जहन में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा मसलक क्या है जो अल्लाह के नबी का मसलक था।